लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थिक याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती, हम सभी भाई बहने हैं पर चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामुदायिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर नारी स्वरूप भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओ, फ्रतेल्ली तुत्ती के प्रथम अध्याय का शीर्षक एक बंद विश्व के ऊपर काले बादल है। इस अध्याय में हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में सीमाओं पर मानवीय सम्मान के अभाव का जिक्र किया था। प्रवासन हमारे विश्व के भविष्य के संबंध में आज की परिस्थिति में पहले से अधिक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। वर्तमान परिस्थिति में प्रवासन अपने भाइयों और बहनों के लिए जिम्मेदारी की उस भावना में हुई गिरावट से प्रभावित है जिस पर प्रत्येक नागरिक समाज आधारित है। उदाहरण के लिए यूरोप इस मार्ग में चलते हुए जोखिम उठाता है, फिर भी अपनी महान सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से प्रभावित होकर जो उसके साधन है जिसके द्वारा वह मानव व्यक्ति की पूर्णता की रक्षा करने और अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, प्रवासियों को सहायता और स्वीकृति देने के आश्वासन हेतु अपनी दोहरी नैतिक जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन खोजता है। संत पापा कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि कुछ लोग हैं जो प्रवासियों के संबंध में अपने को भयभीत और झिझकता हुआ पाते हैं। इसे मैं स्वयं की सुरक्षा का आंतरिक मानवीय स्वभाव मानता हूँ। यद्यपि यह भी सत्य है कि एक व्यक्ति और समुदाय अपने में केवल तभी फलहित और उपयोगी होते हैं यदि वे अपने को दूसरों के लिए सृजनात्मक रूप से खुला रखते हैं। मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ कि हम इस प्राथमिक प्रतिक्रिया से परे जाएं, क्योंकि शक और भय की स्थिति अपने में संकट उत्पन्न करती है जो हमें दूसरों के लिए बंद करते हुए असहनशील बना देती है। हम अपने में यह आभास भी नहीं करते कि हम रंग भेदी के शिकार हो रहे हैं। इस भांति भय हमें दूसरों से मिलन की चाह और अपनी योग्यता से वंचित करता है। हम आज एक विचित्र स्थिति को पाते हैं जहां मानवीय स्वभाव एक तरह से दूसरों के प्रति अपने में बंद और अधीर होता जा रहा है, तो वहीं दूरियां अपने में कम और गायब होती जा रही हैं। इतना कम कि दूसरे व्यक्ति को गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं रह गया है। सारी चीजें अपने में एक तरह से आश्चर्यजनक हो गई हैं, जिनकी हम खोजबीन और जांच पड़ताल करते हैं। लोगों का जीवन अपने में निरंतर एक तरह से निगरानी में चलता है। डिजिटल संचार माध्यम बहुधा गुप्त रूप में सभी चीजों को खुले प्रकाश में लाना चाहता है। इस भांति हम उसे लोगों के जीवन की छानबीन करते, उन्हें बेनकाब करते तथा उनकी व्यक्तिगत बातों को फैलाता हुआ पाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में हम दूसरों के प्रति सम्मान को खोता पाते और यदि हम इसे इनकार करते हुए दूर भी रखें तो भी अपनी बेशर्मी में हम दूसरों के जीवन में ताक झांक करने से बाज नहीं आते हैं। डिजिटल प्रसार के माध्यम घृणा और विध्वंस के कार्य जिस तरह कुछ हमें विश्वास दिलाते हैं। अपने में सकारात्मक आपसी सहयोग नहीं, वरन व्यक्तियों का एक संघ है जो कथित आम दुश्मन के खिलाफ कार्य करता है। डिजिटल मीडिया लोगों को नशे की लत, अलगाव और ठोस वास्तविकता के साथ संपर्क के एक क्रमिक नुकसान को भी उजागर कर सकता है, जो प्रामाणिक पारस्परिक संबंधों के विकास को अवरुद्ध करता है। उनके पास शारीरिक अभिव्यक्ति, चेहरे के भाव, मौन के क्षण, शरीर की भाषा और यहाँ तक कि खुशबू, हाथों का कांपना, झेपना और पसीने की कमी, जो हमें बोलते हैं, जो मानव संचार माध्यम के अंग हैं। हम एक घोर अभाव को पाते हैं। डिजिटल संचार माध्यमों द्वारा हम अपने संबंधों में बढ़ोतरी को देखते हैं, जो समय के साथ बढ़ता और अपनी परिपक्वता को प्राप्त करता है। इसके बावजूद हम इसमें देखते हैं कि इसके द्वारा समुदाय का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा व्यक्तिवाद को गुप्त रूप में बढ़ावा मिलता है, जहां हम एक तरह से अपरिचितों से भय और संवेदनशील लोगों के प्रति अपमान के भाव को प्रसारित होता पाते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा हम दूसरों के साथ जुड़ा होना सेतु का निर्माण करने में अपने को असक्षम पाते हैं। यह मानवीय एकता को जोड़ने में पूर्ण सक्षम नहीं है। श्रोताओं, व्यक्तिगत रूप से जब मानव अपने में आरामदायक उपभोक्तावादी अलगाव को बनाए रखते हैं, तो वे निरंतर अपने सामान्त बंधन के रूप का चुनाव कर सकते हैं, जो विशेष रूप से शत्रुता, अपमान, दुर्व्यवहार, मानहानि और दूसरों में विनाशकारी हिंसा को प्रोत्साहित करता है। और यह संयम की कमी, जो शारीरिक संपर्क में मौजूद नहीं हो सकती, हमें अलग थलग किए बिना नहीं छोड़ती है। सामाजिक आक्रामकता को कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से एक अद्वितीय विस्तार मिला है। इनके द्वारा हम अपने विचारों के विस्तार में एक स्वतंत्रता को पाते हैं। वे बातें या चीजें जिन्हें हम कुछ सालों पहले नहीं कह सकते थे, जिससे सार्वभौमिक सम्मान की हानि हो सकती थी, उन्हें अब अशुद्धता क्रूरतम रूपों में, यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक व्यक्तित्वों के द्वारा भी सहज ही कहते सुन और देख सकते हैं। हम इस बात को ना भूलें कि संचार माध्यम के क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के वृहद लाभ पर आधारित हैं। वे आक्रमण के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों को तैयार कर सकते हैं, जिनके द्वारा विवेक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेराफेरी आसानी से किया जा सकता है। जिस तरह से हम कई मंचों को क्रियाशील पाते, जो अक्सर उन लोगों के विचारों का पक्ष लेते हैं जो समान रूप से सोचते और कार्य करते हैं, जिससे उन्हें वाद विवाद से मुक्त रखा जा सके। ये बंद परिधि नकली समाचारों और झूठी सूचनाओं के प्रसार, पूर्वग्रह और घृणा को फैलाने की सुविधा प्रदान करते हैं। श्रोताओं, हमें इस बात को भी पहचानने की जरूरत है कि कट्टरता के विनाशकारी रूप कई बार धार्मिक विश्वासियों के बीच भी पाए जाते हैं, जिनमें ईसाई भी शामिल हैं। वे भी संचार माध्यमों के विभिन्न रूपों और इंटरनेट के आधार पर मौखिक हिंसा के अंग बन सकते हैं। यहाँ तक कि कैथोलिक मीडिया में भी हदें लांघी जा सकती हैं, जिनमें छीटाकशी, बदनामी, सामान्य बात हो सकती है, जहाँ हम दूसरों से संबंधित सभी नैतिक मानकों और दूसरों के सम्मान को नकार सकते हैं। यह भ्रातृत्व के निर्माण में कैसे योगदान दे सकता है, यह सवाल हम सबों के लिए जीवनदाता ईश्वर पिता की ओर से आता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रैटेली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीत के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है दया उसकी सदा है, वो कितना भला है स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है दया उसकी सदा है, वो कितना भला है स्तुति उसकी सदा है। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 24 नवंबर के ट्वीट संदेश में देखभाल करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने संदेश में लिखा, आइए हम सभी पुरुष, स्त्री, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल में उनकी चिंता करें। देखभाल एवं सामीप्य के उसी मनोभाव के साथ जैसा भले समारी के पड़ोसी प्रेम का मनोभाव था। ऑस्टिन एवेरी के साथ संत पापा फ्रांसिस की किताब के प्रकाशन पर इताली न्यूज़पेपर ला रिपब्लिका ने उनके एक अंश को प्रकाशित किया है। किताब का शीर्षक है लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर, जिसमें संत पापा ने अपने 3 व्यक्तिगत कोविड के काकी पलों को साझा किया है। संत पापा ने कहा, मैंने अपने जीवन में 3 कोविडों का अनुभव किया है, मेरी बीमारी, जर्मनी और कोर्डोबा। संत पापा फ्रांसिस ने अपने व्यक्तिगत एकाकी पलों को एक किताब में साझा किया है, जिसको ब्रिटिश लेखक एवं पत्रकार ऑस्टिन ने सोमवार को प्रकाशित किया। संत पापा के लिए कोविड के समान परिस्थिति पहली बार उस समय आई थी जब वे 21 साल के थे। वे उस समय बॉयनस आयरस में द्वितीय वर्ष के सेमिनेरियन थे और फेफड़ों के संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार थे। वे बतलाते हैं कि उन्होंने जीवन को जिस तरह देखा उससे उनका जीवन बदल गया और उन्होंने कोविड-19 के कारण वेंटिलेटर में सांस लेने के लिए संघर्ष करने का अच्छा अनुभव किया। वे कहते हैं, मैं याद करता हूँ कि मैंने अपनी माँ का आलिंगन किया था और कहा था, बस मुझे बता दीजिए कि क्या मैं मरने जा रहा हूँ। संत पापा बतलाते हैं कि अस्पताल में 2 नर्सों ने उनकी बड़ी मदद की। पहली सिस्टर कॉर्नेलिया ने उनका जीवन बचाया क्योंकि उसने डॉक्टर की जानकारी के बिना ही दवा का खुराक बढ़ा दिया था। दूसरी मिकायला ने दर्द नाशक दवाई देकर दया दिखाई जब उन्हें बहुत अधिक दर्द हो रहा था। मृत्यु को नजदीक से देखने के अनुभव के द्वारा उन्होंने सस्ती सांत्वना से परहेज करने के महत्व को समझा। कई लोग शीघ्र स्वस्थ लाभ की खाली शुभकामनाएं देते हैं, भले ही वे शुभ मतलब से ऐसा करते हैं, किंतु एक धम्भन सिस्टर डोलोरेस तोर्तोलो, जिसने उन्हें बचपन में पढ़ाया था, अंदर आई। उसने हाथ को लिया, चुंबन दिया और चुपचाप बैठ गई। अंततः उसने कहा, आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। उनके शब्द और उपस्थिति ने उन्हें सिखलाया कि बीमारों से मुलाकात करते समय कम से कम बात करनी चाहिए। जर्मनी में सन 1986 में संत पापा ने बिल्कुल संबंध नहीं होने की एकाकी का अनुभव किया था। वे बतलाते हैं कि उन्होंने अधिकतर समय फ्रैंकफर्ट के कब्रिस्तान के सुविधाजनक स्थल से विमानों को देखने में बिताया और अपनी जन्मभूमि की याद की। जब अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता तब उन्होंने जीत की खुशी को किसी के साथ नहीं बांट पाने का अनुभव किया। संत पापा ने अपने कोविड के तीसरे अनुभव के बारे बतलाया कि इससे उन्होंने 1990 और 1992 के बीच अनुभव किया था, जब वे अर्जेंटीना के कोर्डोबा में थे। यह उखाड़े जाने का अनुभव था, किंतु चंगाई के रूप में था, जो मौलिक बदलाव के रूप में आया, खासकर नेतृत्व के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। संत पापा ने 1 साल 10 महीने और 13 दिन कोर्डोबा के जेसुइट आवास में व्यतीत किया। वे वहाँ ख्रिस्त्याग अर्पित करते थे, पाप स्वीकार सुनते थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने शायद ही कभी घर छोड़ा, जिसको वे आत्मरोपित लॉकडाउन कहते हैं। यह उनके लिए फायदेमंद रहा, जिसमें उन्होंने लिखा, खूब प्रार्थना की और विचारों को विकसित किया। वे कहते हैं, उस समय वे 3 चीजों से प्रभावित हुए। पहला, प्रार्थना करने की क्षमता, दूसरा, प्रलोभन का अनुभव और तीसरा, ईश्वर की प्रेरणा से वे संत पापाओं के इतिहास पर लुद्विक पास्टर के 37 संस्करणों को पढ़े। संत पापा कहते हैं कि कोर्डोबा सचमुच एक शुद्धिकरण का स्थान था। इसने उन्हें सहन शक्ति प्रदान की, क्षमा करने, समझने, कमजोर विशेषकर बीमार लोगों के प्रति सहानुभूति रखने की शक्ति दी। वे बतलाते हैं कि उन्होंने छोटी चीजों में बड़ी चीज देखने के महत्व और बड़ी बातों में छोटी चीजों पर ध्यान देना सीखा। कोर्डोबा में उनका समय बढ़ने का था, जो एक कड़ी छटनी के बाद हुआ। संत पापा कहते हैं कि इन 3 व्यक्तिगत कोविडों ने उन्हें सिखलाया कि बड़े कष्ट में बेहतर के लिए परिवर्तन लाने की शक्ति होती है, यदि उन्हें होने दिया जाए। संत पापा फ्रांसिस ने 23 नवंबर को परमधाम पीठे संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल नियुक्त मार्चेलो सेमेरारो से मुलाकात की, जहां उन्होंने धन्य घोषणा की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। धन्य घोषणा के उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: ईश सेवक मरिया चिचेरी, जो एक धर्म प्रांत पुरोहित थे, उनका जन्म 18 सितंबर 1900 को इटली में हुआ था और निधन 4 अप्रैल 1945 को इटली में ही हुआ। ईश सेवक जुवानी एलिया मेदीना, जो एक धर्म प्रांत पुरोहित थे एवं उनके साथ 126 साथी, उन्हें 1936 और 1939 के बीच विश्वास के लिए स्पेन में शहीद होना पड़ा था। ईश सेवक फोर्तुनातो मरिया फरीना फोज्जा के महाधर्म अध्यक्ष थे, उनका जन्म 18 मार्च 1881 को इटली में हुआ था और निधन 20 फरवरी 1954 को इटली के फोज्जा में हुआ। ईश सेवक अंद्रिया मंजोन वाई मंजोन एक पुरोहित थे, उनका जन्म 30 नवंबर 1886 को स्पेन में हुआ था और निधन 10 जुलाई 1923 को स्पेन में ही हुआ। ईश सेवक अल्फोंसो उगोलिनी एक धर्म प्रांत पुरोहित थे, उनका जन्म 22 अगस्त 1908 को फ्रांस में हुआ था और निधन 25 अक्टूबर 1999 को इटली में हुआ। ईश सेविका मरिया फ्रांचेस्का तिक्की क्लारिस कपूचिन की मठवासी धर्म बहन थी, उनका जन्म 22 अप्रैल 1887 को इटली में और निधन 20 जून 1922 को इटली में हुआ था। ईश सेविका मरिया कार्ला चेकिन सेंट जोसेफ बेनेडिक्ट कोतोलेंगो की धर्म बहनों के धर्म समाज की धर्म बहन थी, उनका जन्म 3 अप्रैल 1877 को इटली के चित्तादेला में हुआ था और निधन 13 नवंबर 1925 को केनिया से इटली लौटते समय पानी जहाज में हुआ। और ईश सेविका मरिया फ्रांचेस्का जुआनेतो, वे निष्कलंक मरिया की पुत्रों के धर्म समाज की धर्म बहन थी, उनका जन्म 30 अप्रैल 1902 को इटली में हुआ था और निधन 16 फरवरी 1930 को हुआ। कारितास, जीआरएस और सीआरएस ने एक नई योजना में एक साथ हजारों रोहिंग्या लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है, जो म्यांमार में अपने घर राखाइन से भागकर बांग्लादेश गए हैं। बहुउद्देश्य किशोर केंद्र कारितास बांग्लादेश, जेसुइट शरणार्थी सेवा जीआरएस और अमेरिका के कैथोलिक राहत सेवा सीआरएस द्वारा संचालित बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।